सलाम अलैकुम खुश हाफिज़ साहब।
वालेकुम अस्सलाम।
वाह वाह, बहुत अच्छी गाड़ी ली, मुबारक हो।
बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत मुबारक हो,
मोहब्बत है आपकी।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
हर तरह के कपड़े हैं। हाँ भाई, वही यहीं ईरान में है। थोक में सोफों का कपड़ा।
वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
कैसे हैं?
जी हैं।
अच्छा हाँ, देखो अगर देर कर दी तो मैं भेज दूंगा फिर किसी को। हाँ, उसका चेक मेरे पास भेज दो। हाँ, रात में माल भेजवा दूंगा।
अस्सलाम वालेकुम।
वाह भाई, वालेकुम सलाम। हमारे पार्टनर साहब कैसे हैं? कल का सफर कैसा था?
बहुत अच्छा था, खास तौर से वापसी में तो पता ही नहीं चला कि कब पहुंच गए।
लाए हो?
पार्किंग में खड़ी है, ये लीजिए।
अपने पास ही रखो, और कुछ कागजात भी होंगे जो हमारे वकील मुरादी के पास है, चूंकि नंबर प्लेट वगैरह काम रह गए हैं, वो भी होने हैं।
तो फिर मुरादी से कब मिलना होगा?
आज ही, जब कागजात तैयार हो जाएं। फिलहाल अपने ही नाम करवा लो।
मेरे अपने नाम?
हाँ, क्यों, क्या पसंद नहीं आई?
क्यों नहीं, लेकिन ये गाड़ी बहुत महंगी है।
मैंने कहा था टिप टॉप होकर घूमो, और जो इस तरह घूमता है उसके पास अच्छी गाड़ी भी होनी चाहिए, ताकि लोग समझें कि वो कौन है। अब देखना तुम्हारे कर्ज खाक कैसे तुम्हारे सामने सर झुकाते हैं। मुझे कुछ दिन सफर पे जाना है। हाँ, भूल ना जाऊं, इससे पहले ये बता दूं कि एग्रीमेंट जो था उसमें ये फायदा हुआ है, और जल्द ही एक नया माल आने वाला है। मैं चाहता हूं मेरी गैर मौजूदगी में तुम काम बहुत अच्छी तरह से अंजाम दो। जानते हो दारियुश, अब वो मौका है जब हमें फैक्ट्री के मैनेजमेंट और तौर तरीकों के बारे में कुछ और सोचना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा।
मैं समझा नहीं।
अगर हम बेहतर बिजनेस करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट के बाजार को परखना पड़ेगा, और अपनी प्रोडक्शन को उस वक्त तक कम करना पड़ेगा जब तक नुकसानात को कम किया जा सके। इस वक्त कितने लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं?
तकरीबन 100 लोग।
इनमें से 50 की छुट्टी कर दो।
50 लोगों को? ये बहुत ज्यादा है। इस तरह तो हमारी प्रोडक्शन जीरो पर पहुंच जाएगी, और मरियम को राजी करना भी बहुत मुश्किल होगा।
तो फिर पहले मरहले में 25 को निकालो, 2-3 महीने बाद 10 को, और इसी तरह 25 को। ये तो नहीं हो सकता कि हम जितना फायदा कमाए सब फैक्ट्री के नुकसान की भरपाई में लगा दें। हो सकता है?
नहीं। मिलियन किस लिए है?
ये तुम्हारा हिस्सा है पहले प्रॉफिट से। मैं चाहता हूं खूब दिल लगाकर काम करो, क्योंकि इस बार बड़ी मकदार में शक्कर इंपोर्ट करने वाले हैं। इस मामले में मेरा नाम कहीं नहीं है। मैं चाहता हूं वो सब तुम अच्छे तरीके से अंजाम दो। पहले मरहले में चॉकलेट की फैक्ट्री और या ऐसी जगह की जरूरत है जिन्हें शक्कर की जरूरत हो, जहां ये शक्कर हम भेज सकें।
इत्तेफाक से मेरा एक दोस्त है जिसके पास चॉकलेट, हलवा और इसी टाइप की चीज़ों की फैक्ट्री है। असल में तो वो यज्द के हैं, और ये उनका पुश्तैनी काम है। जिन दिनों मैं जेल में था, मरियम उनके पास भी गई थी, कह रही थी कि उनके मारी हालात ठीक नहीं है।
अरे शाबाश। कोशिश करो उनसे एग्रीमेंट साइन करवा लो, लेकिन याद रहे कि ज़्यादा फजूल खर्ची मत करना। अब उठो, बहुत सारे काम करने।
तो फिर मैं चलता हूँ।
ठीक है,
आपको यकीन है कि आप खुद इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं?
तुम इतने तकल्लुफी आदमी तो नहीं थे? मैंने कहा कि मेरा दिल चाहता है तुम चलाओ, जब जरूरत होगी कह दूंगा, भेज देना।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज। लानत हो तुम पर कियानोश।
अजीब दुनिया है। अभी तकरीबन 40 दिन पहले तुम्हारी बीवी मेरे पास आई थी, लेकिन मैं शर्मिंदा हो गया था। अब ऐसी गाड़ी यकीन नहीं हो रहा है। सच बोलो, मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे या मेरा इम्तिहान ले रहे थे?
इम्तिहान कैसा भाई, कसम से मैं 48 घंटे हिरासत में था, तुम अपने दोस्त से बेखबर रहते हो। लेकिन खुदा ने चाहा और मेरी जिंदगी बदल गई।
कहीं 40 दिनों में क्या तुम पैसा छाप रहे थे क्या दरियो?
नहीं भाई, लेकिन बस ऐसा ही समझो, बिजनेस करने लगा हूँ। सईद, इन दिनों प्रोडक्शन में इतना प्रॉफिट नहीं है, इंसान को प्रोडक्शन के साथ बिजनेस भी करना चाहिए। मरियम ने बताया कि तुम्हारे हालात ठीक नहीं है, क्यों? बहुत पहले तुम्हारे पास आ जाना चाहिए था, लेकिन जरूरी काम पेश आ गया था। इस वक्त भी इसलिए आया हूं कि मुझसे कोई काम हो सके तो मैं हाजिर हूँ।
मैडम, बिलाखिर मुझे क्या करना चाहिए?
मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ। आज के बाद मेरी इजाजत के बगैर ना तो कोई कपड़ा यहाँ आएगा और ना ही यहाँ से जाएगा, समझे?
तो खुसरवी साहब से क्या कहूँ?
उफो, फिर कहा खुसरवी। मैं तुमसे कह रही हूँ कि क्या करना चाहिए, खुसरवी साहब को मैं देख लूंगी।
ठीक,
ये देखें जनाब, ये खुसरवी साहब की हैंडराइटिंग है। लिखा है कि मैं एक पिकअप भर के कपड़े यहाँ से ले जाऊँ। अब 10 दिन से हमारा काम यही है, लेकिन ये मैडम इजाजत नहीं देती।
दिखाओ। निकदिन साहिबा
जी,
खुसरवी साहब की दस्तक का तो राइटिंग है।
आपको क्या हो गया महमूदी साहब, मैं दारियुश का दस्तखत पहचानती हूँ।
हाँ।
मैं चाहती हूँ दारियुश और क्यानी का मामला क्लियर करूँ। इन बेचारों का क्या कसूर है? रात में कोई आता है थान रखता है और दूसरे सुबह में कोई ले जाता है। अरे हमारी जिम्मेदारी क्या है, अपना हिसाब किताब क्लियर करना।
मैंने नंबर मिला दिया, जहमत होगी बात कर लीजिए।
हेलो।
हाँ, मैंने कहा है। अरे भाई, तुम इन मामलों में दखल मत दो। ठीक है, आकर बात करते हैं। खुदा हाफिज। तो बताया नहीं, अगर बेचोगे तो मैं खरीद रहा हूं।
दारियुश, तुम तो अपने हो, हमारा खानदानी मशगला यही रहा है, इसमें फंस गए। जब इतने माल गैर कानूनी तौर पर बहुत ही खूबसूरत शक्ल सूरत में इस मुल्क में इम्पोर्ट हो रहे हैं, तो कौन हमारे माल खरीदेगा?
तुमको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम बेचो, मैं खरीद रहा हूँ, बस।
मुझे नहीं पता तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन दोस्ती की वजह से, जबकि मुझे पैसों की भी सख्त जरूरत है, तब भी तुम्हें खरीदने की सलाह नहीं दूंगा।
तुम बस अपने बारे में सोचो, हमारे लिए परेशान ना हो। देखो, अगर तुम बेच रहे हो तो मैं खरीद रहा हूँ। मैंने खुद यहाँ के लिए बहुत कुछ सोचा है। हाँ तो बोलो।
मैं क्या कहूँ?
इसकी कीमत बोलो।
तुम जो भी कीमत रखो मैं कबूल करूंगा।
तो फिर मिलाओ हाथ, इंशाल्लाह मुबारक।
क्या कहूँ?
देखियो दारियुश, इस फैक्ट्री की मैनेजमेंट का मामला क्लियर होना चाहिए।
क्लियर है?
क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है कि क्या कर रहे हैं?
हाँ। नहीं,
बिलाखर यहाँ पर कितना कपड़ा रहेगा और कितना जाएगा मालूम होना चाहिए।
तुम इन कामों से अलग ही रहो, तुमको अगर कपड़ों की जरूरत पड़े तो जाकर निकाल लो और बाकी काम मेरे हवाले कर दो।
क्या मतलब कि इन सब कामों से मैं अलग रहूं? तुम नहीं चाहते कि मैं जानूं कि क्या करते फिर रहे हो?
क्यों नहीं, लेकिन मसला तफसीली है, इस वक्त बिल्कुल मूड नहीं है। मरियम, वो कर्ज खाहों की लिस्ट कहाँ है? बहुत तलाश कर रहा हूँ, मिल नहीं रही है।
अभी एक हफ्ता और हमारे पास वक्त बाकी है।
हाँ तो इस वक्त है कहाँ?
ये लो।
मैं चाहता हूँ कि कल इन तमाम कर्ज खाहों को सुबह सवेरे कारखाने के आंगन में कर्ज अदा करने के लिए बुलाऊं।
क्या बात है, डाका मारे?
आप कहाँ हैं निकबीन साहिबा कि देख सकें कि आपके शौहर किस तरह तरक्कियों की सीढ़ियों को तय कर रहे हैं। तुम जानती हो मैंने सईद की फैक्ट्री को खरीद लिया है? नहीं जानती थी ना? तुम जानती हो वो खूबसूरत गुड़िया जो बाहर पार्क है वो मेरे नाम हो चुकी है।
तुमने सईद की फैक्ट्री किस लिए खरीदी? तुम क्या कर रहे हो दारियूश?
बिजनेस। अब तो जाकर सीखा है कि इस मुल्क में कैसे अमीर बना जाता है।
धोखा तो नहीं दे रहा, हमारा टाइम बर्बाद करना चाह रहा होगा।
अगर उसने ये काम किया हो तो यहीं तुम्हारी नजरों के सामने उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। देखो ये वारंट पेपर।
अब तुम्हें कहां से यकीन है कि वो आएगा?
बहुत यकीन से कहा था आएगा, पता नहीं।
अब क्यों आंगन में ही? चलो ऑफिस में चाय भी पी लेते हैं, यहाँ बैठने से क्या फायदा।
खुसरवी था?
अरे वही तो था। अरे क्या बन सवर के आया है,
लगता है इसे कोई खजाना मिल गया है। देखो तो बिल्कुल हालत ही बदल गई है।
बिराक आओ।
सलामुन अलैकुम खुसरवी साहब।
कितना लिखना है?
अरे तकल्लुफ नहीं है, अगर जरूरत हो तो हमें भी कोई जल्दी नहीं है।
क्या अब भी सुबह से शाम तक हमारे दरवाजे के सामने सोते
हो? मुझे शर्मिंदा ना करें खुसरेवी साहब, जमाना खराब हो गया है, इंसान नहीं समझ पाता किस पर भरोसा करे किस पर ना करे।
मेरा वारंट पेपर है ना? ये लो, 21 मिलियन लिख दिया है, 1 मिलियन इजाफी ताखीर की वजह से।
बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत शर्मिंदा किया खुसरवी साहब।
खुदा हाफिज।
शुक्रिया, खुदा हाफिज।
निकबीन साहिबा माफ कीजिएगा, बास कारीगरों को जो तनख्वाह मिली है वो इनके लिए नाकाफी है, मदद की गुजारिश की है।
ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट मेरे पास लाओ, देखूं कितनी है, शायद कुछ किया जा सके।
बहुत शुक्रिया।
क्या हुआ, अब क्यों नाराज हो?
तुम्हारी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई।
मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा, कौन सी हरकत?
तलबगारों को यहाँ बुलाकर अपना पैसा दिखा रहे थे।
हाँ हाँ बिल्कुल सही समझी।
सुधरोगे नहीं।
काश होती और देखती मरियम कि उन लोगों के चेहरों का रंग कैसे बदला जा रहा था, मजा आ गया।
हाँ लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपनी शक्लो सूरत इस तरह बदलो।
लेकिन मैं ये सब देखने के बाद पिछली बातें बिल्कुल भूल गया हूं, बहुत ही मजा आया।
लेकिन मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया।
जरा महमूदी को भेजना।
जी जी, अभी उनको भेजता हूँ आपके पास। महमूदी साहब।
जी जना।
पोस्ट ऑफिस साहब ने आपको याद किया है।
ठीक है, तो तुम्हारी तनख्वाह कम है।
जी हाँ।
अरे महमूदी साहब, हमारी मदद का क्या
भाई
हुआ?
इसी सिलसिले में तो जा रहा हूँ।
देखिए रोज ये बात कर रहे हैं, दो तीन महीने से आजकल
क्या मेरा नाम भी लिखा है?
क्या तरीका है?
तो इसी सिलसिले में तो जा रहा हूँ, सुनो तो सही। जरा
तो
लिखा है
मेरा नाम, लिखा
है तो सही। कहाँ लिखा है? दिखाइए तो सही, दिखाए।
लिखा है देखो यहाँ पर।
महमूदी साहब मैं शिकायत करने जा रहा हूँ।
देखो इधर आओ तुम, जरा देखो तुम्हारा नाम लिखा है यहाँ पर।
शिकायत करने
चिल्लाओ मत,
सुन लेंगे, निकाल दे हमें।
चिल्लाओ मत, अभी आ रहा हूँ।
मुझे पता है इनके पास का कुछ नहीं, हमें शिकायत करना होगी।
हाजिर खिदमत हूँ खुसरवी साहब। ये है लिस्ट।
ये क्या है?
नेकबिन साहिबा से अर्ज किया था, बास कारीगरों को मदद की जरूरत है।
हाँ। महमूदी, इन लोगों का हिसाब किताब करके पूरी तरह से रुखसत कर दो।
रुखसत किस लिए?
इनको और उन लोगों को जिन्होंने हड़ताल कर रखी थी, सबको हिसाब किताब के लिए भेज दो। लोग फैक्ट्री में ज्यादा हैं।
ज्यादा हैं?
क्या हुआ, हैरान क्यों?
क्या वाकई आप उन्हें निकालना चाहते हैं?
मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजबूर हूँ। 25-30 लोगों को निकालना ही पड़ेगा। तो बेहतर है कि उन्हीं लोगों को निकाला जाए जिन्होंने वक्त पड़ने पर हमारा साथ नहीं दिया था।
ठीक है।
बैठे क्यों हो?
जी
जाओ, जल्दी वो काम करो जो मैंने तुमसे कहा है।
कैसा है? आपके ख्याल में बुरा तो नहीं है? इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा? मैंने कहा था ऐसा डिजाइन करो जिसे बाहर भी पहना जा सके और ऑफिस में भी। ये कहाँ के काबिल है? तो आप ही ने कहा था ना, आरामदेह होना चाहिए। तुम इसे पहन के बाहर जा सकती हो? जी नहीं।
हेलो जी, जी हैं, होल्ड कीजिए। नेकबिन साहिबा, महमूदी साहब हैं।
जी
अस्सलाम वालेकुम नेकबिन साहिबा, कारीगरों ने हंगामा मचा रखा है।
क्या कह रहे हैं आप?
जी हाँ, आप खुद ही आकर देख लीजिए।
ठीक है, मैं आ रही हूँ। अरे ये कहाँ चली गई?
अरे खुसरो साहब, हमसे ये गलती हो गई, आप कुछ माफ कर दीजिए हमें।
मुझे अफसोस है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ख्याल है। मेरे और नेकबिन साहबा के अलावा एक पार्टनर और भी हैं, उनका ख्याल भी बहुत अहम है।
जब ऐसे हालात में काम नहीं मिल रहे हैं तो प्लीज हमें काम से ना निकालें।
अरे भाई, तुम लोग यही तो चाह रहे थे ना?
नहीं सर, हमने बस एक मदद की ख्वाहिश की थी।
बहरहाल मैंने मुसादत की मुवाफ़क़त कर दी है, मैंने कहलवा दिया है कि इस महीने एक महीने की एक्स्ट्रा तनख्वाह तुम लोगों को दिया, और कुछ नहीं कर सकता मैं, मुझे अफसोस।
नेकबिन साहब हमारे साथ ये
बात किया है,
हमें बाहर निकलना चाह रहे हैं कारखाने से।
ठीक है, तुम लोग अपने अपने काम पर जाओ, मैं बात करती हूँ।
ठीक, जाओ जाओ जाओ।
महमूदी साहब
आप प्लीज हमारी सिफारिश कर दीजिए ना।
अच्छा चलो।
कहिए साहब।
तुम एक लफ्ज मुझसे नहीं कहोगे कि क्या कर रहे हो? सुबह वो कर्जदारों के साथ का रवैया और ये कारीगरों को काम से निकालना। इस वक्त जब प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती हूँ तो तुम कारीगरों को निकाल रहे हो और मुझसे पूछोगे भी नहीं? हंसना भी चाहिए, क्यों ना हंसो, जरूरी नहीं होगा जो नहीं पूछा ना।
ये फैसला मैंने और कियानी साहब ने मिलकर किया।
तुम और कियानी ने, या सिर्फ कियानी ने यह आइडिया तुम्हें दिया है?
अच्छा ठीक है, क्या फर्क पड़ता है?
बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि यानी तुम्हारे बारे में फैसला करता है। दारियूश, हमने ये तय नहीं किया था।
मरियम, लगता है तुम भूल रही हो कि इसी शख्स ने हमें मुसीबतों से निजात दिलाई है। क्या तुम उसके साथ पार्टनरशिप खत्म कराना चाहती हो? हम खुद ही फैसला करेंगे। लेकिन अभी भी 20 करोड़ का कर्जा हमारे सर पर है और इसकी गारंटी वही चेक है जो आपने दिए हैं। हाँ, कियानी गया तो मैं भी गया, तुम भी गई और एक गाड़ी भी गई।
ये गाड़ी गाड़ी गाड़ी, तुम तो और आजिश किए हो। कह दो ना कि हम कियानी के नौकर हो गए हैं बस।
उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही हो मरियम? तुम इन मजदूरों को जो बुरे वक्त पर हमारा साथ देने से इनकार करने लगे थे कियानी साहब पर, जिन्होंने उन हालात में हमारा साथ दिया और मुसीबतों से हमें निकाला, तरजीह दे रही हो। बाज़ वक्त मैं सोचता हूँ क्या तुम वही मरियम हो? मैं पहचान ही नहीं पा रहा हूँ तुम्हें।
देखो, अब इन मसाइल में मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। तुम्हारी जो मर्जी में आए करो।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम सलाम, और सुनाओ क्या हाल है?
सर, मैंने अपने दोस्त सईद की चॉकलेट बनाने वाली फैक्ट्री को खरीद लिया है और जैसा कि आपने फरमाया था, तकरीबन 25 मजदूरों को भी निकाल दिया है।
मेरे घर का एड्रेस तो जानते हो ना?
हाँ हाँ, जानता हूँ।
ठीक है, इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ।
ठीक है, लेकिन इस वक्त मेरे सामने जो ट्रैफिक है उसके मद्देनजर मुझे रात भी हो सकती है।
कोई बात नहीं, इंतजार कर रहा हूँ।
और कोई काम?
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
कौन है?
माफ कीजिएगा, मैं खुसरवी हूँ, मुझे कियानी साहब से काम था।
जी एक मिनट इंतजार कीजिए, अभी किसी को भेजती हूँ।
शुक्रिया।
कोई बात नहीं।
सलाम अलैकुम खुसरो साहब।
वालेकुम सलाम,
खुश आमदेद। आइए, कियानी साहब आपका काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। कियानी साहब, खुसरो साहब तशरीफ लाए।
अरे वाह
सर,
वाह भाई, सलाम अलैकुम,
खुश
आमदेद। वाह भाई,
मोहब्बत है आपकी।
आराम से आ गए? नया एड्रेस मिल गया?
बहुत आराम से।
अच्छी बात है, चलो आ जाओ, ऊपर आ जाओ। रशीद, एक चाय लेकर आना।
जी सर।
और ये नजमदार साहब हैं, हमारे पुराने दोस्त हैं।
अरे वाह भाई वाह।
और आप
माफ कीजिएगा,
और ये हमारे राइट हैंड जनाब खुसरवी साहब, दारियूश।
बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। दारियूश साहब बहुत ही नर्म है, मजेदार। ले।
बहुत शुक्रिया, दिल नहीं चाह रहा।
अरे क्यों, चले। अच्छा देखिए, एक तो खा ले, बहुत मजेदार है।
अब तो नहीं इनकार हो सकता।
बहुत बहुत शुक्रिया।
तुम तो नहीं खाओगे?
नहीं भाई, तुम खाओ, तुम खाओ भाई, मजे करो।
अच्छी बात है, मैं तो खाऊंगा ही, मजा भी लूंगा। वाह वाह, क्या कबाब है। खाओ ना, खाओ ना। वाह वाह वाह, क्या कबाब है।
बहुत काम का आदमी है, बहुत से लोगों को पहचानता है। मैं कुछ दिन के लिए दुबई जा रहा हूं, मैं चाहता हूं ये शकर का सौदा अच्छी तरह से हो जाए।
आपके ख्याल में शक्कर कब तक पहुंच जाएगी?
तुम एक दो दिन के बाद तैयार रहना। मैंने खरीदारों के एक लिस्ट दफ्तर में शिवा के पास रखवा दी है। हमारे लिए वो शक्कर 205 तुमान की पड़ी है, लेकिन बाजार की कीमत 490 तुमान है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। तुम चॉकलेट बनाने वाली कंपनी के कागजात शिवा को दे देना, ताकि वो वक्ती तौर पर इंपोर्ट के काम अंजाम दे।
अच्छा सुनिए, आपके ख्याल में ये शक्कर सरकारी कामकाज खत्म होने से पहले नहीं पहुंच जाएगी?
सरकारी काम क्यानी के लिए कुछ घंटे के काम है बस। लेकिन याद रखना है दारियुश, शक्कर लेते वक्त या बेचते वक्त किसी भी सूरत में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मैं ये चाहता हूं ये काम तुम खुद करो, अपने को दिखाओ। 1300 टन शक्कर है कि इसका प्रॉफिट 35 करोड़ होगा, और छोटे काम मत करना। सब होलसेल्स में बेचना, सब होलसेल्स में बेचना।
नासिर भाई, अरे ये चाय का क्या हुआ यार अभी तक?
आ गए भाई, अगर कोई मदद की जरूरत पड़े तो यावर या शिवा से कहना, उनको मैं कह चुका हूँ, वो तुम्हारी मदद करेंगे हर सूरत में।
यावर अभी वहीं है?
हाँ भाई, एक अधूरा काम है जिसे पूरा करना जरूरी है। और ये नजमदार साहब सिक्के वाले टेलीफोन बूथ की तरह है, जब तक सिक्का नहीं पड़ेगा उस वक्त तक काम नहीं करेगा। अच्छा तुम जा सकते हो, मुझे और कोई काम
तो नहीं। आप इजाजत दे तो मैं चलूं फिर।
ओके, खुदा हाफिज। अच्छा अपना ख्याल रखना, कुछ लोग बाजार में है जो नहीं चाहते कोई नया आदमी उनके दरमियान आए। अगर ऐसे लोग मिले तो उनसे बचते रहो, दूर रहना उनसे। और जैसा कि मैंने कहा, ये नजमदार बहुत काम का आदमी है, लेकिन थोड़ा तेज और जिद्दी है, जरा ध्यान रखना, समझे? आदमी काम का है। खुदा हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम अभी तक जाग रही हो?
हाँ, तो इतनी देर क्यों लगा दी, और अपना मोबाइल भी ऑफ किए हो तुम?
अरे बाप रे, मैं ऑन करना ही भूल गया।
और तुम्हारी नमाज भी कजा हो गई होगी।
उफ, वो भी भूल गया।
तुम वाकई इतना मसरूफ हो?
हाँ।
दारियुश, मैं चाह रही थी, मैं चाहती थी सुबह की वजह से तुमसे माफी मांगू, मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए था।
कोई बात नहीं, सबके साथ हो सकता है।
यावर बोल रहा हूँ सर, यकीन कीजिए सर, हमारा काम नहीं था।
मैं उसे निकालने के चक्कर में था,
लेकिन कोई मौका नहीं मिला, कोई रास्ता नहीं था सर।
ठीक से बोलो, आप क्या गलती की है?
वो लड़की हमारे हाथ से निकल गई। यहां से पकड़ो,
इस तरफ से,
जल्दी करो।
चलो चलो,
संभाल के, जल्दी करो।
बेफिक्र लोग,
कम इन।
क्यानी साहब ने आपके आने से पहले मुझसे कांटेक्ट किया था, वो दुबई जा रहे थे। और ये भी जो लिस्ट है यहाँ पर शक्कर खरीदने वालों की है, और चॉकलेट के जो कंपनी है तो उसके कागजात भी मैं तैयार कर लूंगी। इंशाल्लाह दोपहर तक सब खत्म हो जाएगा।
ठीक है। हेलो,
सलाम अलैकुम।
मंसूरी साहब
जी, बोलिए।
खुश रहिए?
कुछ शक्कर मेरे पास थी, मैं पूछना चाह रहा था अगर आपके काम की हो तो।
कितनी है?
1300 टन है।
एक साथ बेचना चाह रहा हूँ।
फरा मर्जी साहब की तरफ से फोन कर रहे हैं क्या?
जी नहीं, मेरा ही माल है।
कितने में देंगे?
फिक्स कीमत 400 तुमान।
मैं तो 390 में खरीद सकता हूँ। अगर आप चाहें तो मुझे आप जरूर खबर कीजिएगा।
अपना एड्रेस दीजिए, बहरहाल कोई रास्ता निकाल लेंगे।
जी लिखिए।
वालियासर स्ट्रीट, अब्बास आबाद
जी,
मंसूरी शॉपिंग सेंटर, जिससे पूछेगा वो बता देगा।
समझ गए जी। खुदा
खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
देखिए कर्नल साहब, इतने कपड़ों की इम्पोर्ट और उनकी तकसीम किसी एक गाड़ी या स्मगलर या उस बूढ़ी औरत का काम नहीं हो सकता। जरूर पूरा एक ग्रुप इसके पीछे है। बहुत से मौके पर हमारे खबरदार होने से पहले स्मगलिंग का माल बाजार या घरों में मौजूद होता है। हम जुजी तौर पर बेचने वालों से क्या पूछताछ करें ताकि असली स्मगलर या इम्पोर्टर तक पहुंच सके।
हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं ताकि स्मगलरों के रास्ते कंट्रोल में हों, लेकिन वो आसानी से रास्ते बदल लेते हैं और हमारे कंट्रोल किए हुए रास्तों से बचकर निकल जाते हैं, और हम कुछ कर भी नहीं सकते। हकीकत में वो जानते हैं कि हमारे आदमी कहां कहां हैं, लेकिन हम उनके हिलों से नावाकिफ हैं।
आप ठीक कहते हैं, लेकिन ये उस माल के बारे में हो सकता है जिसका इम्पोर्ट बिल्कुल मना हो। लेकिन कपड़े और खाने पीने की चीजें एक साथ जब इतनी मकदार में बाजार में आ रही हैं, तो मेरे ख्याल में वो जरूर कानूनी रास्तों से लेकिन गैर कानूनी अंदाज में धड़ाधड़ इंपोर्ट हो रही हैं। आप क्या कहते हैं?
देखिए वादी साहब, मैंने इससे ज्यादा मकदार में इंपोर्ट किए हुए कपड़ों और दूसरी चीजों की फाइलें देखी हैं। किसी एक में भी कोई गलत रिपोर्ट नहीं मिली है। जितने भी माल उबूरी और मौकती तौर पर इम्पोर्ट हुए हैं हमारे एक्स मशीनों के नीचे से गुजरे हैं, और हाँ, जिन कंपनियों ने इम्पोर्ट किया है वो खुशनाम और मोतबर कंपनियां हैं और काबिल एतबार भी हैं।
तो हम छुट्टी करके घर बैठ जाएं? जब सब कानूनी तौर पर इम्पोर्ट हुआ है तो क्या किया जा सकता है? जन्नती साहब, हमें तनख्वाह क्यों मिलती है?
कर्नल हुसैनी, हमें एक लाश मिली है कि जो इस औरत की फोटो से मुशाबे है जिसकी स्क्रीच हमने हॉस्पिटल में बनाई थी। इस वक्त तो वो लाश ला मेडिसिन कमेटी के हवाले कर दी गई है। आपके हुक्म का इंतजार रहेगा। डन।
पैगाम दरियाफ्त हुआ, जवाब का इंतजार कीजिए। डन।
कोई सबूत, कोई सिरा, कोई गवाह नहीं मिला?
नहीं मालूम। क्या आप लाश को नहीं देखना चाहते हैं?
क्यों नहीं, इसी वक्त।
ये मेरा अकाउंट नंबर है, जब पैसे आप ट्रांसफर कर देंगे तो उसके 24 घंटे बाद आपको शक्कर मिल जाएगी।
لیکن ہم فرام عرضی صاحب کے ساتھ ایسے کام نہیں کرتے. جب ہمیں مال مل جاتا ہے تب ہم ان کو کیش دیتے ہیں یا پھر ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں.
بزنس میں ہر آدمی کا اپنا طور طریقہ ہوتا ہے. ہم تھوڑا تھوڑا کر کے مال دیں گے اور آپ بھی ویسے ہی پیسے ٹرانسفر کریں گے.
اچھا
چلتا ہوں.
فی امان اللہ.
خدا حافظ.
خدا حافظ.
ہیلو.
کیسے ہو داریوش؟
میں ٹھیک ہوں. آپ سنائیے.
تم بتاؤ کیا کیا؟ جن سے کہا تھا ان سے بات کی؟
جی جی میں نے منصوری سے بات کی. 390 میں ان سے ڈن کر دیا ہے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن یاد رہے کہ آج شکر پہنچ جائے گی.
پوری شکر فیکٹری کے اسٹور میں جا کر رکھنا تاکہ.
کپڑے کے اسٹور میں؟
ہاں اور کیا, کہیں اور تو نہیں رکھ سکتے نا.
کیوں؟
کیوں کا کیا مطلب ہے؟
تم سے جو کہہ رہا ہوں وہی اتنا کرو.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ضرور ضرور.
ہم نے طے کیا تھا فی الحال کچھ پوچھو گے نہیں.
جیسا آپ کہیں.
شاباش.
خدا حافظ.
این قرارم نبود تو بی خبر بری, من خسته شم که تو بی هم سفر بری. نه نه این قرارم نبود من رنگ شب بشم تو سر سپردشی من جون به لب بشم.
ارے بھائی تہران کے اس ٹریفک میں تو آدمی کوئی کام ہی نہیں کر سکتا. کیا مجال کے کوئی پروگرام بنایا جا سکے؟
اب ہمارے آپ کے جیسے لوگوں کا کام بھی کوئی کام ہے؟
یہ یونیورسٹی جو ہر روز جاتا ہوں دیر سے پہنچتا ہوں. بھائی ذرا تیز چلائیں گے, مجھے بہت دیر ہو گئی ہے. شکریہ. السلام علیکم امی.
وعلیکم السلام بیٹے. تم ہو کہاں؟ ٹیلی فون کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہ تیسری بار فون کر رہی ہوں, بہت پریشان ہو گئی ہوں.
معاف کیجیے گا, میں بہت مشغول ہو گیا تھا.
کوئی بات تو نہیں ہو گئی
ہے؟ نہیں کوئی بات نہیں ہوئی ہے, پڑھائی میں لگا ہوا تھا. دو تین ہفتے میں امتحان شروع ہو رہا ہے, اس وقت بھی کلاس پہنچنے میں دیر ہو چکی ہے امی.
ٹھیک ہے بیٹا, میں تمہارا وقت نہیں لوں گی. صرف پوچھنا یہ تھا
کہ جمعرات جمعے کو آؤ گے نا؟ نہیں امی, اس ہفتے تو بہت مشکل ہے.
بیٹے اپنے آرام کا خیال رکھا کرو, اب جاؤ. لیکن جلدی واپس آنا، تمہارے بابا تمہارا انتظار کرتے کرتے تھک گئے ہیں۔
ان کی آنکھیں بس دروازے پہ لگی رہتی ہیں۔
امی جانتا ہوں، لیکن اس وقت
بہت مشکل ہے، تھوڑا صبر کیجیے۔
اوہو، انتظار اور انتظار، مناسب موقع، جیسے چین
جاپان میں رہنے لگے ہو۔
اچھا آپ بتائیے کہ اس وقت میں کیا کروں؟
کچھ نہیں بیٹا، اب میں کیا کہوں، جو تمہارا دل چاہے کرو، خدا حافظ۔
اب آپ کیوں خفا ہو رہی ہیں امی؟
نہیں بیٹے،
نہ خفا ہوں نہ پریشان، تمہیں خدا کو سونپا۔
ہیلو امی، سنیے تو امی، السلام علیکم پروفیسر صاحب۔
سلام، آئیے۔ یہ بحث ذرا لمبی اور تھکا دینے والی ہو گئی تھی، کیا خیال ہے کہ ایک تفریح کا وقفہ ہو جائے؟ میں نے پہلے سے یہ وسائل مہیا کر دیے تھے۔
کیا فزکس لیب میں بنائی تھی؟
یہ سارا بکھیڑا ہماری تفریح کا حصہ ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک مسئلے کے بارے میں پڑھا تھا، اس لیے چاہتا ہوں کہ اس کے مطابق فزکس کا ایک سادہ سا تجربہ کیا جائے، مل کر اس پر غور کریں۔ یہ بال اس کے اندر ڈالیں۔ اب تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ یہ برتن بھر گیا ہے؟
جی پروفیسر۔
اب میں کنکریاں بھی اس میں ڈالتا ہوں۔ دیکھا یہ خالی تھا، شاباش۔ اور اب میں ریت بھی اس میں ڈال رہا ہوں۔ اچھا، اجازت ہے کہ میں دو پیالی چائے بھی اس میں ڈال دوں تاکہ ریت کے درمیان خالی جگہ بھی بھر جائے، یعنی ایک طرح کی الفت و محبت ان کے درمیان آ جائے۔ ہاں تو بتائیے، میں یہ سب کر کے آپ کو کس چیز کی طرف متوجہ کر رہا تھا؟
نہیں معلوم پروفیسر صاحب۔
یہ برتن ہماری زندگی کی علامت ہے، اور یہ بال گویا ہماری زندگی کی اہم ترین چیزوں کی پہچان ہے۔ اہم چیزیں جیسے ہمارے اعتقادات، خاندان، بال بچے، ماں باپ، تندرستی، شریک حیات، اچھے دوست وغیرہ۔ اور یہ کنکریاں باقی دوسری اہم چیزیں ہیں۔ جیسے کیا؟ جیسے ہمارا کام کاج، گھر، جائیداد، باغات اور گاڑی وغیرہ۔ اور اب ریت۔ ریت ہماری زندگی کی سادہ ترین چیزوں کی علامت ہے۔ اگر میں نے اس برتن میں پہلے ریت ڈال دی ہوتی تو پھر بال اور کنکریوں کی جگہ نکل نہ پاتی، جو ہماری زندگی کی بے حد اہم اور ضروری چیزیں ہیں۔ تم لوگ بھی اگر اپنی سرگرمی، قوت اور وقت زندگی کی چھوٹی چھوٹی اور غیر اہم چیزوں پر صرف کرو گے تو پھر تمہارے پاس اپنی آئندہ زندگی کی ضروری اور اہم چیزوں کے لیے پروگرام بنانے کا وقت نہیں بچے گا۔
اسکیوز می پروفیسر، وہ دو پیالی چائے کا قصہ کیا ہے؟
آفرین ہو تمہارے شوق جستجو پر جو یہ سوال کیا۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ تمہاری زندگی خواہ کتنی ہی مشکلوں سے بھرپور کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی جگہ ضرور نکل آتی ہے کہ تم دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ بیٹھ کر دو پیالی چائے پی سکو۔
پروفیسر۔
ہاں کہو۔
اجازت ہے؟
آئیے، دیر سے آئے ہو، جلدی جانا چاہتے ہو؟
پروفیسر معاف کیجیے گا، ایک ضروری کال ہے، میں کر کے واپس آتا ہوں۔
یقین کرو، اگر تم نے منصوبہ بندی کی اور ہر کام کو وقت پر انجام دیا تو تم سارے کام وقت پر پورے کر سکو گے۔ اپنی زندگی کے تمام گوشوں پر نظر رکھو، خاص طور سے منصوبہ بندی اور وقت کا تعین کرنا مت بھولو، حتیٰ کہ ان کاموں کے لیے جو شاید تمہارے لیے بے حد اہم اور فوری نوعیت کے ہوں۔
تو پروفیسر صاحب، اب جو ہم اس نتیجے تک پہنچے ہیں تو ہم کیا اگلے ہفتے نہ آئیں؟ ایک ضروری کام ہے، اسی کے سلسلے مجھے ایک سفر پہ جانا ہے، اگر ہو تو میں نہ آؤں۔
ٹھیک ہے بھائی، لیکن میرے خیال میں ہر کلاس میں دیر سے پہنچنے کے بارے میں غور کرو۔
اچھا، خدا حافظ۔
ہر دن کا کام اسی دن پورا کر لو، کیونکہ ہر روز کا اپنا کام ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔